भजन संहिता 34। भजन 34 दाऊद का भजन है। इस भजन में वो कहता है, उसने अभिमलेक के सामने पागल होने का नाटक किया। संभवतः ये उस समय की घटना है जब वो अभिमलेक के पास गया और उसने उसे बाहर निकाल दिया था। उस समय जब दाऊद राजा शौल से भाग रहा था, क्योंकि शौल उसे मारने पर था, तब वो पिलिस्तियों के देश को भाग गया था और वो पिलिस्ती के राजा आकिश के पास गया। दाऊद ने सोचा, मैं यहां आ तो गया हूं, परंतु पिलिस्ती मुझसे बैर रखते हैं, क्योंकि मैंने गोलियात को मारा था। वो पिलिस्तियों के विरुद्ध लड़ाई में इसराइलियों का अगुआ था। उस समय स्त्रियों ने बाहर नाचते हुए गीत गाया था। शौल ने हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को। अब मैं यहां पिलिस्तियों के देश में हूं और चारों ओर से राजा और उसके सैनिकों से घिरा हुआ हूं। दाऊद ने सोचा, यदि राजा नाराज होकर मुझे खत्म करने की आज्ञा दे दे तो क्या होगा, मैं मुर्दे के समान हो जाऊंगा। इसलिए दाऊद पागल की तरह व्यवहार करने लगा। उसका ऐसा करना मुझे अच्छा लगा। जब हम बच्चे थे तब ऐसी अजीब हरकतें करते थे ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित करे। दाऊद दाढ़ी पर राल टपकाने लगा। वो कभी दीवार पर चढ़ता तो कभी दीवार को खरोंचता था, और जब वो राजा आकिश के सामने लाया गया तब राजा ने कहा, तुम एक पागल को क्यों मेरे पास लाए हो, इसे यहां से ले जाओ। इस तरह दाऊद पागलपन की हरकतों के द्वारा राजा आकिश से बच निकला। जब वो बच गया तब उसने ये भजन लिखा। ये इस भजन की पृष्ठभूमि है। शायद वो हंसते हुए कहता है, क्या ये हंसी की बात नहीं, क्या तुमने मुझे दीवार पर चढ़ते देखा। उसके पागलपन के नाटक ने काम किया। वो वहां से बच निकला और उसने कहा, भजन 34 पद 1 से लेकर 4 तक, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। दाऊद कहता है कि पागलपन का नाटक उसे भय के कारण करना पड़ा। उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। नीति वचन की पुस्तक ये कहती है, नीति वचन 29 अध्याय 25 पद, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। परंतु दाऊद लोगों को कहता है, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, परमेश्वर के लोगों द्वारा उसकी बड़ाई करने की पुकार। भजन 34 पद 5 से लेकर 7 तक, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवियों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। बाइबल कहती है, भजन 91:11-12 पद, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें, वे तुझको हाथों हाथ लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। नए नियम में इब्रानियों की पुस्तक में हमें दूतों के बारे में बताया गया है, कि वे आत्माएं हैं और उन लोगों की सेवा के लिए भेजी गई है जो उद्धार के वारिस है। इसलिए आप अपने रक्षक स्वर्गदूत की आवाज सुने, क्योंकि परमेश्वर का दूत उनके समीप रहता है जो उसका आदर करते हैं, और वो उन्हें छुटकारा दिलाता है। हम में से हर एक का एक एक रक्षा करने वाला दूत होता है जो हम पर दृष्टि रखता है। वे सेवक आत्माएं हैं जो हमारी सेवा के लिए भेजी गई है, हम जो उद्धार के वारिस हैं उनके लिए। मैं कल्पना कर रहा हूं कि जब मैं स्वर्ग जाऊंगा तो अपने स्वर्ग दूत से पूछूंगा कि वो कभी कभी कहां गायब हो जाता था, परंतु मैं उसको धन्यवाद भी दूंगा क्योंकि बहुत बार मैं बचाया गया हूं। मैं जानता हूं कि वो केवल ईश्वरीय विधान से था, परमेश्वर का ईश्वरीय हाथ मेरे जीवन पर है। मैं नहीं जानता कि मैं बचकर कैसे निकल आया। एक बार मुझे स्वर्गदूत के साथ एक रोचक अनुभव हुआ था। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, मैं जानता था कि परमेश्वर का दूत मेरे साथ था, जो मेरी सुरक्षा करता था और मुझे संभालता था। ये एक विशेष और प्रभावी अनुभव था। परमेश्वर के बचाने वाले हाथ के लिए मैं उसे बड़ी कृतज्ञता से आज भी याद करता हूं। भजन 34 पद 8, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। आपको इसका अनुभव होगा। मैं यहां खड़ा होकर पूरे दिन आपको बता सकता हूं कि परमेश्वर कैसा भला है, परंतु उचित तो ये होगा कि आप स्वयं अनुभव करें। मैं चॉकलेट खाकर बता सकता हूं कि चॉकलेट में बादाम का मिश्रण है। चॉकलेट और बादाम का मिश्रण आइसक्रीम में हो तो आइसक्रीम कितनी स्वादिष्ट लगती है, परंतु आप वास्तव में तब तक उसका स्वाद नहीं जान सकते वो कितनी स्वादिष्ट है जब तक कि आप उसे ना खाएं और आप उसके स्वाद का अनुभव प्राप्त ना करें। मैं यहां खड़ा रहकर बता सकता हूं कि परमेश्वर कितना भला है, परंतु उसे जानने के लिए आपको स्वयं ही अनुभव करना होगा। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। भजन 34 पद 8 से लेकर 12 तक, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवियों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिमों को घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होवेगी। हे लड़को, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखें? कौन मनुष्य ऐसा होगा जो दीर्घायु नहीं चाहता? यहां एक नियम दिया गया है। भजन 34 पद 13 से लेकर 15 तक, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उसे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यशिया के 59 अध्याय में हम पढ़ते हैं, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया कि सुन न सके, परंतु अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। भजन 34 पद 16 से लेकर 18 तक। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। इसलिए जिनके मन टूटे हुए हैं परमेश्वर उनके समीप रहता है। भजन 34 पद 19। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परमेश्वर ने विपत्तियों से छुटकारे की प्रतिज्ञा नहीं की है। परमेश्वर प्रतिज्ञा नहीं करता कि आपको परेशानियां नहीं होंगी। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, भजन 34 पद 19 में आगे लिखा है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। दुष्ट पर बहुत सी विपत्तियां आती है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम धर्मी हो या दुष्ट, विपत्तियां तो आएगी। जीवन में सताव तो होगा, बहुत सी विपत्तियां धर्मी पर और बहुत सी अधर्मी पर आती हैं। अब आप पूछेंगे कि धर्मी और अधर्मी मनुष्य में भेद क्या रहा, परंतु यहोवा धर्मी को उन सब से मुक्त करता है। भजन 34 पद 20। वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के लिए है। सैनिकों ने क्रूस पर लटके अपराधियों की टांगे तोड़ने की आज्ञा मांगी ताकि वे शीघ्र मर जाएं। उन्होंने उन दोनों डाकुओं की टांगे तोड़ दी जो यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, और जब वे यीशु की टांगे तोड़ने आए तब उन्होंने उसे मरा हुआ पाया। इसलिए उसकी टांगे ना तोड़कर उन्होंने भाले से यीशु की पसली में मारकर उसकी मृत्यु को निश्चयी किया। यीशु की पसली से खून और पानी निकल आया, जिसका अर्थ है कि उसका हृदय फट गया था, परंतु उन्होंने उसकी टांगे नहीं तोड़ी ताकि वचन पूरा हो जाए। वचन इस प्रकार कहा गया था, उसकी कोई भी हड्डी ना तोड़ी जाएगी। ये भजन यीशु मसीह के संदर्भ में है। यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान था, वो बलि का मेमना था। जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने अपनी सेवा आरंभ करने से पहले यीशु का परिचय दिया तब उसने कहा, यूहन्ना पहला अध्याय 29 पद, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है, और हम बचाए गए। पत्रस कहता है, पहला पत्रस पहला अध्याय 18-19 पद, तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं से नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। बलि के लिए ये आवश्यक था कि मेमने की एक भी हड्डी टूटी न हो। ये भविष्यवाणी यीशु में पूरी हुई। बलि का मेमना जिसकी कोई हड्डी तोड़ी नहीं गई थी। भजन 34 पद 21 और 22। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है, और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा।